الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورة الانبیاء چل رہی ہے ہماری اس کلاس کے اندر، اس میں ہم قرآن کی جلد نمبر اور جو آخری واقعہ ہم پڑھ رہے تھے یا جن آخری نبی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس سورت کے اندر ہم ان کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، وہ ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام. تو آیت نمبر 89 اور 90 کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، آگے خلاصہ تفسیر شروع کرنی تھی. تو خلاصہ تفسیر جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں دی ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ اور زکریہ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے. وزکریہ کے اندر یہ پورا مفہوم شامل ہے کہ اور زکریہ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیجئے. ٹھیک ہے. اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا لکھتا ہے کہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھ کو لا وارث نہ رکھیو، یعنی مجھ کو فرزند دیجئے جو میرا وارث ہو. تو وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کسی شخص سے اس کی املاک کو ٹیک اوور کرے، املاک کو اس سے لے لے اس کے جانے کے بعد. ٹھیک ہے. تو جب اصل شخص چلا جائے، چاہے دنیا سے چلا جائے، چاہے جو ہے وہ کسی جگہ سے چلا جائے، تو اب اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص جو کہ اس کی صلاحیتوں کو سنبھال لے یا اس کی مال کو سنبھال لے، اس کے ورثے کو سنبھال لے، اس کے ٹریڈیشن کو سنبھال لے، اس کی روایات کو سنبھال لے، اس کے علم کو سنبھال لے، ٹھیک ہے، اس کے گھر کو سنبھال لے، اس کی زمینوں کو سنبھال لے. سنبھال لے سے مطلب یہ کہ اس کو اس سے لے اور پھر اس کا آگے کام کرے، اس کا آگے انتظام کرے. سنبھال لے کا یہ مطلب، سنبھال لے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لے، کہ گھر کو سنبھال لے تو جی اس نے گھر اٹھا لیا اپنے کندھے کے اوپر، زمینوں کو سنبھال لے تو زمین کندھے پہ اٹھا لی، علم کو سنبھال لے تو علم کندھے پہ اٹھا لیا. کیا مطلب سنبھال لے کا؟ مطلب کہ اس کا انتظام کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کے جو ہے وہ فرائض پورے کرے وغیرہ. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو جو ہے پھر اس کا یعنی جانے والے کا وارث کہیں گے. ٹھیک ہے. جیسے باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا وارث جو ہے وہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں. ایک بیٹا ہے تو وہ وارث بنے گا، دو بیٹے ہیں تو دو بیٹے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے. اور شریعت نے جو مقدار بنائی اس کے حساب سے بیٹیاں بھی وارث بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹے ہی وارث بن سکتے ہیں، بلکہ بیٹیاں بھی وارث بن سکتی ہیں، ڈپینڈنگ آن دا مٹیریل، کس چیز کا وارث بن رہے ہیں. تو جو چھوڑنے والا چھوڑ کے جاتا ہے اس کا وارث بنتا ہے. ٹھیک ہے. جو چھوڑ ہی کے نہیں گیا تو اس کا کیسے وارث بنے گا، ہے نا. کوئی شخص جو ہے وہ گھر چھوڑ کے نہیں گیا، کرائے کا گھر تھا. ٹھیک ہے. تو اب کرائے کے گھر کا تو وارث نہیں بنتا نا، کیونکہ کرائے کا گھر تو اس کا گھر ہے ہی نہیں، رائٹ. उसका घर तो वो है जो कि उसकी अपनी मिल्कियत में था, जिस पर उसने किसी न किसी तरीके से कब्जा किया था, है ना, वो उसका जाती घर बना, तो उसका वारिस बनेगा, ठीक है ना। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरा तो कोई वारिस नहीं है। क्या मतलब मेरा कोई वारिस नहीं है, यानी दुनियावी तौर पर भी मेरा कोई वारिस नहीं है और दीनी तौर पर भी मेरा कोई वारिस नजर नहीं आता जो कि मेरे पूरे के पूरे काम को संभाल सके, ठीक है। इनका कोई बेटा नहीं था और बजाहिर बेटी के भी कोई आसार नजर नहीं आते कि इनकी कोई बेटी भी नहीं थी, उसका भी कोई तस्करा नहीं है, ठीक है, तो नहीं था, इनकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ करी वारिस की, लेकिन साथ साथ ये भी फरमा दिया कि और यूं तो सब वारिसों से बेहतर यानी हकीकी वारिस तो आप ही हैं, कि जब बंदा चला जाता है तो बंदे का के पीछे इस दुनिया के अंदर जो है वो जो कुछ भी उसका माल छूटा, उसका असबाब छूटा, या उसका इवन इल्म भी छूटा, तो वो अल्लाह ताला की मिल्कियत में वापस आ जाता है, राइट। वैसे तो अल्लाह ताला की मिल्कियत में हमेशा ही रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने टेम्पोरारिली इंसानों को चीजों का मालिक बनाया है, ठीक है ना, जुजवी तौर पर भी और जुज वक्ती तौर पर, जुज्वी तौर पर भी और जुज वक्ती तौर पर भी अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी मखलूक का वारिस बनाया है। मिसाल के तौर पर भैंसे हैं, राइट, अब भैंसे जो है वो उनका मालिक कौन है, अल्लाह ताला, राइट। जमीन है, उसका मालिक कौन है, अल्लाह ताला। इल्म, इल्म का मालिक कौन है, अल अलीम, अल अलीम, जो कि अल्लाह ताला की जात है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपने इल्म में से थोड़ा सा इल्म जो है वो इंसान को दे देते हैं, जमीनों में से थोड़ी सी जमीन किसी इंसान को दे देते हैं, भैंसों में से, है ना, भैंसे हैं, गायें हैं, बकरियां हैं, मवेशी हैं, तो उनमें से थोड़ी सी मवेशी जो है वो किसी इंसान को दे देते हैं, ठीक है ना। अब वो जब तक इस दुनिया में जिंदा रहता है तो वो उन चीजों का मालिक कहलाता है, ठीक है। जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी आंख बंद होते ही सारी मिल्कियत उसकी वापस कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला के पास वापस चली जाती है, यानी अल्लाह ताला फिर उन भैंसों के इमीडिएटली मालिक बन जाते हैं। अब ये बंदा चला गया, अब ये उसका मालिक नहीं है, इसकी तो आंख बंद हो गई, इसकी तो रूह कब्ज हो गई, अब ये उस भैंसों का मालिक नहीं है, अब ये उस जमीन का मालिक नहीं है, अब ये उस इल्म का भी मालिक नहीं है, क्योंकि इल्म भी इससे रुख्सत हो गया, वापस अल्लाह ताला की कुल मिल्कियत में चला गया, ठीक है। इसी वजह से हम ये जो कहते हैं ना कि ये फलाना जो घर है ना, ये तो अब्बा का घर है, अब्बा मरहूम का घर है, ये हम गलत कह रहे होते हैं कि फलाना जो घर है, जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं, ये हमारे अब्बा मरहूम का घर है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये अब्बा मरहूम का घर नहीं है, ठीक है ना, ये अब्बा मरहूम का घर नहीं है। या तो अब्बा जिंदा है तो फिर ठीक है उनका घर है, और अगर वो मरहूम हो चुके यानी दुनिया से चले गए, अब ये उनका घर नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये अब्बा मरहूम का घर था, ठीक है ना, ये अब्बा मरहूम का घर था, अब नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही अब्बा मरहूम की जान निकली, वैसे ये घर उनकी मिल्कियत से बाहर आ गया, खत्म हो गया उनकी मिल्कियत, ठीक है। अब ये किसकी मिल्कियत में चला गया, अल्लाह की मिल्कियत में चला गया इमीडिएटली, फौरन, इसमें कोई टाइम नहीं लगता इसके अंदर, ठीक है। अब अल्लाह ताला की मिल्कियत में चला गया, अब अल्लाह ताला जो है ना वो, जिसको अल्लाह ताला का फैसला है कि ये घर जो है ना, अब ये, इसके दो बेटे थे और एक बेटी थी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उस घर को दो बेटों के अंदर और एक बेटी के दरमियान डिवाइड कर दिया। अब ये घर जो है ना, ये उन दो बेटों का है और ये एक बेटी का है, ये अब्बा मरहूम का घर नहीं है। पता है आप लोगों को ये बात, सबको पता है ना ये बात, इंशाल्लाह सभी को पता होगी, या किसी को नहीं पता तो आज पता लग गई, ठीक है, या अगर कुछ एतराज है तो फिर पूछ लीजिए, कुछ इश्काल है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब्बा का घर चला गया, अब बेटी का हो गया और बेटों का हो गया, जितनी जितनी अल्लाह ताला ने मकदार बनाई है ना, कि भाई इसके जो है वो इतने पांच हिस्से किए जाएंगे, ठीक है ना, बाकायदा पांच हिस्से तोड़ तोड़ करके नहीं किए जाएंगे, बल्कि घर की मिल्कियत निकाली जाएगी, ठीक है ना, कि कितने कितने पैसों का ये घर है। अब उस पैसों में से जितने का, यानी 4 करोड़ का, 5 करोड़ का घर है जी, ठीक है ना, 5 करोड़ का घर है, तो अब इस 5 करोड़ के जो है वो 5 हिस्से बनाए जाएंगे, यानी एक 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 एक, एक करोड़, ठीक है। अब इस 1 करोड़ के अंदर से 2 करोड़ जो है ना वो एक बेटे के हो गए और 2 करोड़ जो है वो दूसरे बेटे के हो गए, और 1 करोड़ जो बच गया वो बेटी का हो गया, ठीक है। वैसे तो मैं विरासत में काफी कच्चा हूं, जो आलिमात मौजूद हैं वो इसलाह कर सकती हैं अगर गलत हिस्से बनाए तो, ठीक है। अब ये एक हिस्सा जो है वो 1 करोड़ की मिल्कियत के बराबर वो घर बेटी का हो चुका है, और 2 करोड़ मिल्कियत के बराबर घर बेटा नंबर वन, और 2 करोड़ मिल्कियत के बराबर वो घर बेटा नंबर टू, ये उनका घर हो चुका है, ठीक है। अब बेटा नंबर वन हो या बेटा नंबर टू हो या बेटी हो, अगर वो इस पूरे घर पे कब्जा कर लेगी और बाकियों को हिस्सा नहीं देगी, जैसे बेटी साहिबा जो थी वो सबसे बड़ी थी और बेटे जो थे ना वो अभी दो दो तीन तीन साल के थे, उन्होंने कहा जी ये तो छोटे हैं, ये तो मेरा घर है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। या अम्मा हुजूर जो है, अगर अम्मा मौजूद हैं तो अम्मा ने कहा मैं नहीं देती बच्चों को, ये तो सारा का सारा मेरा घर है, ठीक है ना, और ये मेरा ही रहेगा क्योंकि मैं हूं असल में, है ना, मैं असल तो बच्चों की माँ मैं हूं, मेरे पैरों के नीचे जन्नत है। जन्नत किसके नीचे है भाई? मेरे पैरों के नीचे है, ठीक है। तो अम्मा कहे कि घर मेरा है, मेरी बात मानोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या किया अम्मा हुजूर ने, अम्मा हुजूर ने कब्जा कर लिया, कब्जा ग्रुप समझते हैं ना, जो किसी के माल के ऊपर नाजायज कब्जा कर लेता है, अम्मा ने कब्जा कर लिया, या किसी बेटे ने, अगर बेटा बड़ा था बेटे ने कब्जा कर लिया तो बेटा कब्जा ग्रुप वाला कहलाएगा, ठीक है, वरना बेटी कब्जा ग्रुप वाली कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो एक घर का मामला है। उसी तरीके से कोई जरी जमीन थी, राइट, कोई खेत था, वो खेत जो है वो अब्बा का था, अब अब्बा का इंतकाल हो गया, अब क्या करेंगे उस खेत के साथ, उस खेत को भी जो है वो अब्बा हुजूर मरहूम के बेटों और बेटियों, और अगर बीवी भी, उसका जाहिर बीवी का भी हिस्सा शरीयत ने रखा है, तो इन सब के अंदर उस खेत को बांट देंगे, और अगर नहीं बांटा तो फिर क्या होगा जी, कब्जा, ठीक है ना, कि जिसने भी उसका अपने पास रखा हुआ है और उसका इरादा नहीं है बेटियों में बांटने का या दूसरे बेटों में बांटने का, वो है काबिज। वो कौन है जी? काबिज। अब वो रहता किधर है जी? वो किसी कोठी में नहीं रहता, वो गांव में रहता है, गांव में, ठीक है ना, गांव में रहता है, राइट, और आम सा एक घर है उसका, लेकिन उसने जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अपने भाइयों बहनों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये शख्स जो है वो नेकोकार कहलाएगा कि गुनाहगार कहलाएगा, राइट, क्या कहलाएगा ये शख्स, क्या क्या है ये शख्स, ये नेकोकार है कि ये गुनाहगार है जिसने के अपने भाइयों और बहनों के जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये शख्स जो है वो क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी है उनको अंदाजा होगा इन बातों का ना, ठीक है। अब ये शख्स जो है ना वो जरदारी हाउस में नहीं रहता, ये शख्स जरदारी हाउस में नहीं रहता, ये शख्स बनीगाला में नहीं रहता जहां इमरान खान साहब रहते हैं, जरदारी हाउस में जरदारी साहब रहते हैं, और नवाज शरीफ साहब किधर रहते हैं जी, उनका घर किधर है पता नहीं कहाँ कहाँ की वो, हाँ रायवंड के अंदर उनकी कोठियां हैं। अब ये शख्स जो है ना ये गांव में रहता है खाली, ये ऐसी कोठियों में नहीं रहता, ये कराची लाहौर इस्लामाबाद के आलीशान घरों में नहीं रहता, लेकिन क्या ये गुनाहगार नहीं है जी? क्या ये, चूंकि ये इस्लामाबाद में नहीं रहता, ये कराची में नहीं रहता, ये लाहौर में नहीं रहता, तो इस वजह से क्या ये गुनाहगार नहीं है? क्या इसने दूसरे इंसानों की मिल्कियत के ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ? क्या कब्जा अगर शहर वाला करेगा, अगर कब्जा सियासतदान करेगा तभी गुनाहगार होगा, गांव में रहने वाला जो है वो गुनाहगार नहीं होता कब्जा करके। उसी तरीके से और भी आगे आ रही हैं, और बातें भी आ रही हैं, ठीक है, वो उसकी उस वक्त करेंगे, ठीक है जी। तो बात समझ में आ रही है कुछ? जी ये गांव वाले कोई थोड़ी गुनाह करते हैं, तो गरीब लोग कोई थोड़ी गुनाह करते हैं, राइट, गुनाह तो खाली अमीर सियासतदान करते हैं, राइट, गुना तो खाली कराची वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, और जो है वो बम्बई वाले और दिल्ली वाले और पता नहीं कौन कौन से बड़े शहर है इंडिया के अंदर, है गुना तो खाली वो करते हैं, गरीब कहाँ से गुनाह करने वाला हो गया, गरीब कहाँ से गुनाहगार हो गया, ठीक है ना। तो किसने कहा भाई आपको, कहां से आपने ये डिसाइड कर दिया ये वाली बात, ठीक है ना। सारा कसूर तो नाउजुबिल्ला किसका है, अल्लाह का। सारा कसूर किसका है, अल्लाह का। ऐसे खाम खाम में लोगों को जो है ना वो अजियतें देता रहता है, खाम खाम में लोगों को रुलाता रहता है। हमने को थोड़ी कोई गलत काम किया है कभी, है ना। हम तो बेचारे मजलूम है ना, मजबूर महज। कभी हमने किसी का कुछ लूटा ही नहीं, कभी हमने किसी को जो है वो तकलीफ ही नहीं पहुंचाई, है ना। हमने कुछ को थोड़ी किया है कभी किसी का खराब, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके के जवाबों की हमें जरूरत है, हमें नहीं पता इन चीजों के जवाब, ठीक है ना। इस वजह से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वारिस, ठीक है, तो हकीकी वारिस अल्लाह का मतलब ये है कि असल में अल्लाह ताला की मिल्कियत है, वो अल्लाह ताला को वापस लौट जाती है, फिर अल्लाह ताला जो है वो आगे इंसानों में उसको बांट देते हैं, ठीक है। तो फरमाया कि इसलिए फर्जंद भी वारिस हकीकी ना होगा, बल्कि एक वक्त वो भी फिना हो जाएगा। लेकिन इस जाहिरी वारिस से बाज दीनी फवायद और मुनाफे हासिल हो जाएंगे, ठीक है, कि ये मेरा वारिस बनेगा तो इससे जो है वो, यानी क्योंकि अंबिया जो होते हैं उनके पास जो मादी मिल्कियत होती है, जो 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 मटेरियल चीजें होती हैं वो बहुत थोड़ी सी होती हैं, ठीक है ना। और इनका जब इंतकाल होता है ना, तो वो इंतकाल से पहले अपनी उन उन मिल्कियतों को भी खत्म कर देते हैं, अंबिया नबी, ठीक है। इंतकाल के वक्त उनकी कोई मिल्कियत नहीं रहती जिस्मानी, जिस यानी जो फिजिकल मिल्कियत होती है। इंतकाल जब इनका हो रहा होता है ना, उस वक्त इनके पास सिर्फ एक मिल्कियत रह जाती है, वो क्या, इनके उलूम, उलूम ये इनकी मिल्कियत रह जाती है, ठीक है ना। तो अब जो इनका अगर बेटा होगा तो वो बेटा जो है वो क्या चीज इनसे विरासत में लेगा, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं और इनके पास, तो क्या चीज विरासत में लेगा, इल्म, दीनी, दीन का काम, दीन के उलूम, ठीक है। तो दीनी फवायद और मुनाफे हासिल हो जाएंगे, इसलिए उसकी तलब है ना। जकरिया अलैहिस्सलाम ने इस वजह से अल्लाह ताला से वारिस की दुआ करी थी, सो हमने उनकी दुआ कबूल कबूल कर ली, ठीक है ना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे जो है ना मुझसे मांगे, अल्लाह ताला बिन मांगे भी देते हैं। और हमारी अक्सर चीजें जो हमारे पास मौजूद हैं, हमने कोई नहीं मांगी अल्लाह ताला से, वो बगैर मांगे हमें मिली भी है, पैदाइशी तौर पर मिली हुई है, या बड़े होने के बाद मिलती गई मिलती गई। हमने कोई हर चीज के लिए कोई थोड़ी दुआ मांगी है, राइट। आपने दुआ मांगी थी अपने घर के लिए, अल्लाह मुझे घर दे दे, उससे पहले आप जो है सड़क पे रहती थी, दुआ मांगी तब अल्लाह ने घर दिया, नहीं, अल्लाह ताला ने बगैर दुआ मांगे घर दिया हुआ है, राइट। हाँ, किसी को दिया होगा शायद, किसी के पास पहले घर नहीं हो तो शायद उसने दुआ मांगी तो घर मिला, लेकिन करोड़ों में से कोई एक ऐसा होगा कि दुआ मांगी फिर उसके बाद घर घर मिला है, बाकी करोड़ जो है ना वो तो सारे के सारे बगैर दुआ के जो है वो घर के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। उसी तरह अक्सरों की औलादें तो बगैर दुआ की हो जाती हैं, फिर कुछ कुछ अल्लाह ताला जरा टाइम देते हैं, जरा दुआएं मांगो फिर उसके बाद घर मिलेगा, फिर उसके बाद औलाद मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाकी खाना पीना कपड़े लत्ते गाड़ी सब कुछ जो है वो बगैर दुआ के अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन चंद चीजें अल्लाह ताला जो है ना, बहुत थोड़ी सी चीजें अल्लाह ताला अपने पास रखते हैं कि दुआ करो फिर मैं तुम्हें दूंगा, ठीक, दुआ करो फिर मैं तुम्हें दूंगा, बहुत थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने दुआ करी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, ठीक है। इनके साथ ये मामला रखा कि बगैर दुआ के जो है ना वो बेटा नहीं दिया, औलाद नहीं दी, बाकियों को जो है बगैर दुआ के भी बेटे मिल गए, ठीक है। अंबिया इल्म के वारिस हैं, ये इसीलिए कहा जाता है अंबिया इल्म के वारिस हैं, ये इसीलिए कहा जाता है, नहीं ये नहीं कहा जाता, ठीक है। बल्कि जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस हैं इल्म के अंदर, ये कहा जाता है, ठीक है। जो जो जुमला कहा जाता है ना, वो जुमला ये होता है कि उलमाए कराम जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, ठीक है। और क्या चीज विरासत में मिली है उलमाए कराम को, अंबिया का इल्म, ठीक है। अंबिया की तलवारें नहीं मिली उनको विरासत में, या अंबिया की जो है वो जरा बख्तर और अंबिया की जो है वो घर और उसके अलावा कपड़े वगैरह, ये विरासत में, ये तो चली गई म्यूजियम के अंदर, राइट, अंबिया की तलवारें, और अगर कोई किसी की तलवार वाकई रह गई, नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, वो किधर गई? वो गई म्यूजियम के अंदर, कोई तुर्की के म्यूजियम में रखी हुई है, तो कोई जो है वो आजरबाईजान के म्यूजियम में रखी हुई है, तो कोई कहीं के। अंबिया ने इल्म विरसे में लिया, ठीक है, दीन दुआ से मिलता है, बहुत लोगों को तो बगैर दुआ के दीन भी मिल जाता है, ठीक है, यानी बहुत कुछ दीन का बगैर दुआ के भी मिल जाता है, लेकिन दीन के अंदर जो तौफीकें हैं ना, कबूलियतें हैं, तो वो फिर दुआ के साथ मिलती हैं, और बगैर दुआ मांगे भी अगर दिल में तलब हो, एक चाहत हो, एक तवज्जो हो, तो उससे भी बहुत कुछ मिल जाता है। भाई ये कोई थोड़ी कि आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, या आपने जो है किसी को सदका खैरात दिया, तो आपने क्योंकि दुआएं मांगी थी इस वजह से आपने किसी को सदका खैरात दिया, सदका खैरात दिया है, या नमाजें पढ़ी है, या उम्रा किया है। हाँ, हज के लिए जरा दुआएं मंगवाते हैं अल्लाह ताला, ठीक है ना, कभी कभी उम्रे के लिए भी मंगवा लेते हैं, कभी कभी जो है वो कुछ और बड़ा दीन का काम हो, है ना, दावत व तबलीग का काम हो, जिहाद का काम हो, बड़े जो काम होते हैं उनके लिए दुआ मांगनी पड़ती है, अक्सर अक्सर लोगों को, सबको नहीं, अक्सर लोगों को, फिर कहीं जाकर के तौफीक मिलती है, वरना तो दीन की ये कोई थोड़ी है कि आप नमाजें जो पढ़ी है दीन नहीं है, क्योंकि ये दुआ के बगैर आपने नमाजें पढ़नी थी, है ना, ये नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई तो इस वजह से दीन नहीं, भाई नहीं, वो भी दीन ही है, ठीक है ना, तो बगैर दुआ के दीन मिल रहा है ना, ठीक है, तो बहुत कम चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं कि जिनके लिए दुआ मंगवाते हैं फिर दे देते हैं, ठीक है, बहुत कम चीजें ऐसी हैं, तो हम उनके लिए भी नहीं मांगते, वो तो हमारा कसूर है ना फिर उसके अंदर। अच्छा, तो हमने फिर उनको यहया फर्जंद अता फरमाया, और उनकी खातिर से उनकी बीबी को भी जो बांझ थी, ठीक है, यानी इनकी बीवी जो है ना, ये उनकी उम्र गुजर चुकी थी, या तो उनको पैदाइश से ही कोई ऐसी ऐसी डिसेबिलिटी थी, या कुछ उम्र के अंदर ऐसी हो गई है, या कोई ना कोई ऐसे इश्यूज पर पैदा हो जाते हैं कभी ख्वातीन के अंदर, कि जिसकी वजह से वो औलाद के काबिल नहीं रहती, या ये कि पहले तो काबिल थी, फिर उसके बाद जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर औलाद के काबिल नहीं रहती, जिस भी रीजन की वजह से अब ये बांझ हो चुकी थी, ठीक है, तो उनको फिर दोबारा से अल्लाह ताला ने औलाद के काबिल कर दिया, ये सब अंबिया जिनका इस सूरत में जिक्र हुआ, ठीक है, तो अब ये इनका जिक्र अब खत्म हुआ, और फिर अब एक एक अल्लाह ताला ने उमूमी जिक्र सारे अंबिया का, कि ये नेक कामों में दौड़ते थे, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, युसारिउन फिल खैरात, साबिकून का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, युसारिउन का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है नेकी कामों में आगे बढ़ना, ठीक है, और ये जो 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 वर्ब फॉर्म है, ये जो सीगा है, ठीक है, ये जो बाब है, जिस बाब से ये वाला लफ्ज आता है, सारा युसारिउ साबका युसाबिकु, इसके अंदर मफहूम, इसकी खासियत क्या होती है इस बाब की, ग्रामर वाले ख्वातीन को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने सरफ नाव पढ़ी हुई है, इसकी खासियत क्या है कि एक दूसरे से मुकाबले में कुछ काम करना, ठीक है, तो युसारिउन अभी के एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे नेकी के काम के अंदर, तो उम्मीद व बयम के साथ हमारी इबादत किया करते थे, ठीक, उम्मीद भी लगी होती थी इनको, ना उम्मीद भी नहीं होते थे, मायूस भी नहीं होते थे, और साथ जो है ना वो खौफ भी लगा होता था, और हमारे सामने दब कर रहते थे, ठीक है, जिसको अल्लाह ताला का ध्यान हो ना, जिसको अल्लाह ताला की थोड़ी सी भी मार्फत मिल जाए ना, ऐसा शख्स पर मायूस नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा शख्स मायूस नहीं हो सकता, मायूस कौन होता है, मायूस वो होता है कि जिसका ध्यान बिल्कुल अल्लाह की तरफ नहीं होता, जो बिल्कुल अल्लाह को नहीं देखता, या अल्लाह ताला की नेमतों को नहीं देखता, या अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं देखता, वो शख्स मायूस हो जाता है ना, मुसीबतें पड़ी, या जो है वो उसको अगर नसीहत भी करते हैं ना, अगर नसीहत भी कर दी ना उस बंदे को, वो उधर भी मायूस हो जाएगा, है ना, जैसे आजकल चल रहा है ना, ये मार्केट में आजकल ये चल रहा है कि भाई गुनाह वुना की बातें वहां ना करो, लोग मायूस हो जाएंगे, राइट, लोग मायूस हो जाएंगे, भाई क्यों मायूस हो जाएंगे यार, पहले तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, अब जो है वो थोड़ा सा अगर इस तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि गुनाहों से अल्लाह ताला की माफ की से माफी मांग लें, तौबा कर लें हम सबके सब, ये नहीं कि जी आपका घर टूटा है तो आपने गुनाह किया था इस वजह से आपका घर टूट गया, नहीं, ऐसा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, कि जिसका घर टूटा है वही गुनाहगार था, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है ना, मैन मुमकिन है कि जिनके घर नहीं टूटे वो ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं, और जिनके टूटे हैं गुनाहगार तो वो भी हैं। ये नहीं कि वो पाकबाज थे और मुत्तकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहे थे, राइट? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन गुनाह के दर्जे होते हैं, कोई बड़ा गुनाह होता है, कोई छोटा गुनाह होता है। बिल्कुल मुमकिन है कि जिसके घर बह गए हैं, जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, वो छोटे गुनाहगार थे, और जो अय्याशी के साथ अपने घरों के अंदर अभी रह रहे हैं, है ना, और कोई उनको तकलीफ नहीं पहुंची है, वो ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। ये घर टूटने से फैसले नहीं होते कौन बड़ा कौन छोटा, ये फैसले होते हैं इंसान के अमल से। कौन सा अमल कर रहा है, क्या अमल कर रहा है, इससे पता चलता है कौन। तो इस वजह से गुनाहों की बात जो है ना, ये इसको मायूसी के साइड पर मत लेकर के जाएंगे। नहीं, मायूस मत करो, मायूस मत करो भाई। क्यों मायूस करो यार, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की नियमतों को जानता है, अल्लाह ताला की कुदरत को जानता है, आप उसको याद दहानी करा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं? मायूस हो जाएंगे लोग, कोई नहीं मायूस होंगे यार, ठीक है? और जो मायूस होगा तो वो उसका कसूर है, वो क्यों अल्लाह ताला को नहीं पहचानने की कोशिश कर रहा, वो क्यों अपने आप को समझता है कि वो ऐसी खुद ब खुद दुनिया में आ गया था और खुद ब खुद दुनिया से चला जाएगा, कोई उसका बनाने वाला नहीं है, कोई उसको खिलाने वाला नहीं है। अगर वो मायूस हो रहा है तो इस वजह से मायूस हो रहा है, क्योंकि वो अल्लाह को देखता नहीं है, राइट? अंबिया का काम करे बंदा और कहे कि जी अंबिया का काम जो है ना लोगों को मायूस कर देना हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो देयर इज अ लॉट टू लर्न, हमें बहुत कुछ अभी सीखने और समझने की जरूरत है, जिसको हमें नहीं, हम गौर से तवज्जो से बातें नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इस वजह से हम पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इस वक्त, या इस वक्त क्या क्या होता रहता है दुनिया के, हमें कुछ नहीं पता। मारुफ मसाइल में फरमाते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि एक फर्जंद वारिस अता हो, उसकी दुआ मांगी, मगर साथ ही ये भी अर्ज कर दिया कि अंत खैरुल वारिसीन, कि बेटा मिले या ना मिले, हर हाल में आप तो बेहतर वारिस हैं, राइट? अल्लाह ताला को जो है ना, वो दुआ मांगने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला को काम असाइन कर रहे हैं कि बेटा दे दो, है? और आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर, है ना, बेटा दो वरना पट्टी, राइट? बेटा दो वरना मैं तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे दर को छोड़ के किसी और दर के ऊपर चला जाऊंगा, है ना, बेटा दो वरना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा, ये दुआ नहीं होती, राइट? दुआ तो होती है अल्लाह आप दे दीजिए, और अगर नहीं भी दिया ना तो आपकी आपका फैसला है, मैं आपके सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ, राइट? मांगना आपने सिखाया, आपको आप खुश होते हैं मांगने से, इस वजह से मैं आपसे मांग रहा हूं, लेकिन मैं कोई शर्तें नहीं लगा रहा आपके साथ, दे दो वरना, राइट? नहीं देंगे अल्लाह फिर भी मैं आपका बंदा ही रहूंगा। बच्चों की क्लास के अंदर बात हो रही थी, लेकिन वो जरा कुछ और बातें शुरू हो गई उसके अंदर, इस वजह से बात पूरी नहीं हो सकी। नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो नाकाम हो जाते थे जब सराया जो है वो भेजे, गजवात किए, ठीक है ना, तो गजवा उहद के अंदर वह कामयाबी नहीं हुई, राइट? वो जो जंग जीतने वाला मामला होता है, गजवा उहद के अंदर नहीं हुआ। उसी तरीके से और भी जो है वो गजवात हुए छोटे छोटे, कि जी फलाने काफले को लूटने के लिए निकले, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिनके पास वही भी आती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते रहते हैं उनके पास, है ना, लेकिन काफला लूटने के लिए निकले, क्या हुआ, काफला पहले से चला गया, है ना, नाकाम वापस आ रहे हैं, नाकाम वापस आ रहे हैं, है ना, जिसको कहते हैं ना हाथ मलते हुए, कुछ नहीं हाथ आया, वापस आ गए, ठीक है ना। तो बच्चों ने किसी बच्चे ने सवाल किया था कि क्यों नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नाकाम वापस आ गए, तो उस वक्त क्योंकि दूसरे टॉपिक पे बातें चल रही थी, तो हमने एक दूसरा बात एक दूसरा जवाब दे दिया उस वक्त। अगली क्लास में अल्लाह ने तौफीक दी तो हम बच्चों को समझाएंगे, नहीं, है ना, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला क्यों किया, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अल्लाह के बंदे, सबसे बेहतरीन बंदे जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे, ठीक है ना। तो वो जो बंदगी होती है ना, बंदगी बंदगी है, ये कोई थोड़ी होती कामयाबी, हर वक्त कामयाबी मिलेगी तब मैं बंदगी करूंगा, नाकामी मिली तो बंदगी छोड़ दूंगा, राइट? कामयाबी मिलेगी तो बंदगी करूंगा, नाकामी मिलेगी तो बंदगी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें ये प्रैक्टिकल समझा दिया, प्रैक्टिकली समझा दिया कि बंदगी का ताल्लुक कामयाबी से नहीं होता, है ना, कामयाबी से नहीं होता। देखो मेरे रसूल को कितनी मरतबा नाकामियां हुई, क्या उन्होंने बंदगी छोड़ी, क्या उन्होंने नमाजें छोड़ी, क्या उन्होंने मेरे हुक्मों की अताअत छोड़ी, क्या उन्होंने दीन का काम करना छोड़ा, है कि अल्लाह ये क्या बात हुई, है है? आपने मुझे कहा कि मैं जाऊं जाके काफला लूट कराऊं, वहां पहुंचा तो वहां तो काफले ही गायब है ना, काफले ही गायब। तो अल्लाह मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है ना, ये कैसा अल्लाह का नबी है कि ये तो काफले के पीछे जाता है और काफले ही नहीं मिलता है ना, नाकाम वापस आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बंदगी ए अल्लाह मिलेगा तो भी बंदगी करता रहूंगा, कामयाबी मिलेगी तो भी बंदगी करता रहूंगा, कामयाबी नहीं मिलेगी तो भी बंदगी करता रहूंगा। ठीक है, उसी तरीके से ज़करिया अलैहि सलाम, ए अल्लाह बेटा मिलेगा फिर भी मैं आपका बंदा ही रहूंगा, राइट, और बेटा नहीं मिलेगा फिर भी मैं आपका बंदा रहूंगा। ठीक है, तो ये आदाब है जो कि हम अंबिया के जरिए से सीखते हैं, अल्लाह ताला हमें ये आदाब सिखाते हैं अपने नबियों के वास्ते से। ठीक है, कुरान मजीद के अंदर ये आदाब अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं, ठीक है, और हदीस मुबारका के अंदर भी अल्लाह ताला हमें आदाब सिखाते हैं, क्योंकि नबी अलैहि सलाम के वाकयात ज्यादातर हमें हदीस मुबारका से मिलते हैं, कुरान मजीद में तो नबी अलैहि सलाम के सारे वाकयात नहीं है ना। ठीक है, तो कुरान और हदीस इससे अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बताते हैं कि देखो मेरे नबी ऐसे थे, मेरे नबी ऐसे थे, तुम भी ऐसे बनने की कोशिश करो। ठीक है, तो वही फरमाया कि ये भी अर्ज कर दिया कि अंत खैरुल वारिसीन, के बेटा मिले या ना मिले, हर हाल में आप ही बेहतरीन वारिस हैं। ठीक है, ये पैगंबराना रियायत अदब है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की असल तवज्जो हक तआला की तरफ होनी चाहिए, सिर्फ अंबिया की नहीं है, अंबिया की उम्मतियों की भी असल तवज्जो तो अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है, गैर अल्लाह की तरफ उनकी तवज्जो हो भी तो असल मरकज से हटने ना पाए। ठीक है ना, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई गैर अल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह ताला ने वास्ता बना दिया, तो अब वो जो वास्ता बना किसी चीज का उसका भी शुक्रिया अदा करना है ना, राइट। तो अब किसी का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो यह हराम तो नहीं है, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमा दिया कि क्या है, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, है ना, कि जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो इंसान जो है वो उसने कोई थोड़ी दिया है, इंसान ने तो खाली तकसीम किया है, इंसान ने तो खाली चीज पहुंचाई है, देने वाला तो अल्लाह है। तो कोई कहे कि मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, देने वाला तो अल्लाह है, तुमने तो खाली कुछ तक पहुंचाया है, मैं तुम्हारा क्यों शुक्रिया अदा करूं? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने आदाब सिखाए, इंसान का भी शुक्रिया अदा करो, लेकिन शुक्रिया अदा करो, ये मत करना कि इंसान का शुक्रिया अदा करते करते जो है ना वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के हुक्मों को भूल गए, अल्लाह की रजा को भूल गए, है ना। अम्मा अब्बा का इतना शुक्रिया अदा किया कि अम्मा अब्बा की कहने के ऊपर अल्लाह का हुक्म ही तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे आजकल उमूमी तौर पर सबसे बड़ी मुसीबत घरों के अंदर यही है, बेटियां जो हैं वो अम्मा अब्बा से इतनी मोहब्बत के पर्दा नहीं करती। क्यों नहीं करती? अम्मी नाराज हो जाती है पर्दा करने की वजह से, अब्बा नाराज हो जाते हैं पर्दा करने की वजह से। तो अम्मा अब्बा का तो हक है ना जी, अम्मा अब्बा ने तो हमें पाला, हमें पोसा, हमें जो है वो इतनी सारी जो है वो हमारे आगे पीछे, हर वक्त हमारे आगे पीछे, हमारे में हमारे लिए सब कुछ किया अम्मा अब्बा ने। तो अम्मा अब्बा को नाराज कैसे कर सकते हैं भाई, अम्मा अब्बा को कैसे नाराज कर सकते हैं? तो इस वजह से जो है ना वो अल्लाह का हुक्म तोड़ रही होती है। और पता नहीं कुछ लोग तो बेचारे, कुछ तो होती हैं उसके ऊपर शर्मिंदा, उनको अंदाजा होता है कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन अक्सर तो इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा दलीलें दे रही होती हैं, माँ बाप का हक, माँ बाप का हक है ना, अल्लाह का हक, माँ बाप का हक कौन सा बड़ा है भाई। ठीक है, तो इंसान का शुक्रिया अदा करने का मतलब ये नहीं है कि जो असल है देने वाला है ना, माँ बाप किसने दिए है ना। अगर अल्लाह ताला आपकी पैदाइश के वक्त आपकी अम्मा का अपने पास बुला लेता तो अम्मा रहती हैं आपके पास, अगर अल्लाह ताला आपकी अम्मा के दिल से आपकी मोहब्बत निकाल लेता तो फिर अम्मा तो कुछ ना करती ना आपके लिए। ठीक है, अब्बा कितने अब्बा हैं जो बच्चा पैदा करते हैं बच्चे चले जाते हैं, है ना, वो भी बाप ही होते हैं, वो भी बाप ही होते हैं जो कि बच्चों का कोई ख्याल नहीं करते। तो अल्लाह ताला का एहसान है ना कि अल्लाह ताला ने बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाली, बाप ने हमारे लिए कुछ किया, राइट। तो हम कैसे बंदे हैं अल्लाह ताला के माँ बाप को तो याद रखते हैं लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं, और अल्लाह ताला के हुक्मों को समझते हैं कि तोड़ने वाली चीज सी टूट गई कोई बात नहीं। जैसे बच्चा होता है ना घर के अंदर, वो कुछ माएँ जो हैं वो जो जरा अच्छी अकलमंद माएँ होती हैं, तो बच्चे से अगर ग्लास टूट जाता है तो माँ क्या कहती है, बेटा कोई बात नहीं, टूटने वाली चीज से टूट गई, कोई मसला नहीं है, दूसरा आ जाएगा। हमारे लिए अल्लाह के हुक्मों की इतनी हैसियत है कि नहीं है? टूटने वाली चीज से टूट गई, कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म ही तो था, और कौन सी बड़ी बात थी। फिर हम कहते हैं जी हमसे बड़ा नेक तो कोई है नहीं, हम तो अल्लाह के वली है ना, और हम पे अजाब क्यों आएगा भाई, हमने कौन सा गुनाह किया है। अल्लाह का हुक्म तोड़ना वो तो टूटने वाली चीज होती है, टूट जाती है, वो हमने कोई थोड़ी कुछ गलत काम किया। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, तो फरमाया कि यदउनना रगबन व रहबा, ठीक है, कि वो रगबत और खौफ यानी राहत और तकलीफ की हर हालत में अल्लाह ताला को पुकारते हैं। ठीक है, तकलीफ हो जा राहत की हालत हो, और इसके ये मानी भी हो सकते हैं कि वो अपनी इबादत और दुआ के वक्त उम्मीद व बयम दोनों के दरमियान रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल ईमानु बैनर रजा वल खौफ, रजा कहते हैं उम्मीद और खौफ कहते हैं डर, खौफ है उर्दू के तो लफ्ज है, उर्दू में भी तो इस्तेमाल होता है। तो ईमान तो इन दोनों के दरमियान रहता है। क्या मतलब कि ईमान वाला जो है वो कभी उम्मीद की हालत में, कभी खौफ की हालत में, कभी उम्मीद की हालत में, कभी खौफ की हालत में। बाकायदा उलमा ने उसके ऊपर तफसील लिखी कि बीमारी की जब हालत हो तो उम्मीद होनी चाहिए गालिब, और जब सेहतमंदी की हालत हो तो खौफ गालिब रहना चाहिए, जब जवानी के दौर में हो तो खौफ गालिब रहना चाहिए, और जब बुढ़ापे के दौर में हो तो उम्मीद गालिब रहनी चाहिए। राइट, जब नेमतें मिल रही हो तो खौफ गालिब रहना चाहिए, और जब नेमतें छिन रही हो तो उम्मीद गालिब रहनी चाहिए। क्या मतलब, अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर उम्मीद गालिब रखो। ये जहनी कैफियात हैं, ये उम्मीद और खौफ जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल जहनी सोच है, ये सोच जिसके ऊपर हमें इख्तियार है कि हम कौन सी वाली सोच अपने ऊपर गालिब रखें, ये इख्तियारी चीज है ना, ऑप्शनल है कि हमारा, हमारे पास अल्लाह ने ऑप्शन दिया है कि आप इस वक्त कौन सी वाली बात सोचें, किस चीज को अपने ऊपर, किस सोच को अपने ऊपर गालिब रखें, इसी वजह से ये गालिब रखने वाली बात हो रही है। और जिस चीज के ऊपर आपका इख्तियार ही नहीं, उसको आप कैसे, उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इख्तियार वाली चीजें हैं उम्मीद और खौफ। ठीक है, तो नबी तो परफेक्शन के लेवल पर होते हैं, इस वजह से वो रहते हैं हमेशा उम्मीद और खौफ के, कभी उम्मीद कभी खौफ, कभी उम्मीद कभी खौफ, और मौके महल के हिसाब से। ये नहीं कि जी जिस वक्त उम्मीद गालिब होनी चाहिए थी उस वक्त जो है वो अपने ऊपर खौफ गालिब करके बैठे हुए हैं, है ना, और जिस वक्त जो है वो खौफ गालिब होना चाहिए था उस वक्त अपने ऊपर उम्मीद गालिब करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं तो उम्मीद और खौफ के दरमियान ही रहता हूँ, है ना। नहीं भाई, जिस वक्त उम्मीद का वक्त था उस वक्त आपने खौफ खौफ गालिब कर लिया, और जिस वक्त जो है वो खौफ का वक्त था उस वक्त आपने उम्मीद गालिब कर ली। ये नहीं है अल ईमानु बैन रजा वल खौफ, ठीक है ना, ये आपने जो है ना वो उल्टा समझ लिया है इसको, या आपने अमल उल्टा कर लिया है। बेशक ठीक है आप दरमियान में तो हैं, आप उम्मीद खौफ के दरमियान तो रहते हैं, लेकिन ये मकसूद नहीं है, नहीं था। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई हम बैनल रजा वल खौफ जिंदगी गुजार रहे हैं, है ना, तो भाई इल्म हासिल करेंगे तब पता चलेगा ना कि कौन सा मौका उम्मीद वाला मौका होता है और कौन सा मौका जो है वो खौफ वाला मौका होता है। जिसको इल्म ही नहीं वो तो उल्टा ही काम करेगा ना फिर। यानी इतना तो पता चल गया कि हाँ जी दरमियान में रहना है, दोनों कैफियतें होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इतना नहीं पता था किस वक्त कौन सी कैफियत होनी चाहिए, तो फिर उल्टा काम करेगा फिर इसका। ठीक है, तो इल्म जो है ना ये सबसे अहम चीज है, इल्म सबसे अहम चीज, जहालत के साथ जो है ना, और कहते हैं ना वो नीम हकीम है? नीम हकीम यानी आधा इल्म हासिल किया पूरी बात नहीं समझी, तो उससे जो है ना फिर यानी वो आधा इल्म भी नुकसान पहुंचाता है इंसान। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा अच्छा, उन्होंने जो आखिरी जुमला था वो पूरा नहीं पढ़ा हमने, कि अल्लाह ताला से कबूल और सवाब की उम्मीद भी रहती है और अपने गुनाहों और कोताहियों की वजह से खौफ भी। ठीक है, कोताहियां नबियों से जो है वो गुनाह तो होते ही नहीं थे, लेकिन वही बात के खिलाफ गुना भी अगर कोई काम हो गया, या जो है वो अपनी तरफ से थोड़ी सी भी अगर उनको फील हो रही है कि जी हमें हमने वैसा नहीं किया जैसे अल्लाह का हक था, तो उसके ऊपर उनको खौफ होता रहता था। ठीक, जिन्होंने पर्दा देखा ही नहीं पैदा होने के बाद, इनका सवाल है, डायरेक्ट मैसेज में लिखा है तो इस वजह से आप लोग पढ़ नहीं सकते, तो सुन लीजिए इस या जिस पढ़ रहा है, कि जिन्होंने पर्दा देखा ही नहीं पैदा होने के बाद से, क्योंकि उनकी अम्मी को दादी को नानी को कभी देखा ही नहीं, तो उस बेटी को कैसे पता होगा पर्दा पर्दे का, उसमें कौन हुआ फिर गुनाहगार। यानी जो बच्ची जो है वो अपने घर में पैदा हुई, उसने ना अम्मा को पर्दा करते हुए देखा, ना दादी को, ना किसी को भी, ठीक, तो कौन गुनाहगार होगा फिर? फिर क्या हम ये सोचें कि हमारे वालदैन ने अच्छी दीनी तरबियत नहीं करी? आपका क्या ख्याल है? इतना तो आपको भी पता है। देखें, बच्चों को जो सही दीनी तरबियत नहीं करी तो ये वालदैन गुनाहगार है। ठीक है, इस जुमले को जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वालदैन गुनाहगार हैं, है ना। अब वो गुनाह से तौबा कर लें, बाद में अल्लाह ताला उनके उस गुनाह को माफ कर देंगे, तो फिक्र ना करें कि आपके वालदैन जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। नहीं, वो तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला सारे गुनाह को माफ कर देंगे, या आप जो है वो उनके लिए इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, तो अल्लाह ताला आपके इस्तिगफार की वजह से भी वालदैन को माफ कर सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है ना कि तौबा कर ली, माफ कर दिया, इस बच्चों ने इस्तगफार किया, अल्लाह ताला ने वालदैन को माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कि उन्होंने गुनाह किया नहीं। भाई गुनाह तो उन्होंने किया ना, कि उन्होंने अल्लाह के फराइज को छोड़ा, ना खुद उन फराइज पर अमल किया, ना अपनी औलादों को सिखाया। गुनाह तो उन्होंने किया, 100% उन्होंने गुनाह किया, ऑफ कोर्स उन्होंने गुनाह किया। ठीक है, तो वही गुनाहगार हैं। अब ये जो बच्ची है, ये बच्ची जो है जब तक बालिग है, बालिग नहीं हुई उस वक्त तक तो कुछ मसला नहीं है, है ना, क्योंकि बालिग होने के बाद जो है वो गुनाह लिखे जाते हैं, उससे पहले तो गुनाह ही नहीं लिखे जाते, पक्की बात है ये। ठीक है, लेकिन बालिग होने के बाद भी जो है ना, अब देखें, ये जो फराइज का इल्म है ये हासिल करना भी फर्ज है। ठीक है ना, तो अब इस बच्ची को फराइज का इल्म हासिल करना चाहिए था, नहीं हासिल किया, तो देखें अल्लाह ताला क्या करते हैं। अल्लाह ताला ये करते हैं कि बंदों को जो है ना, जिन जो खुद इल्म नहीं हासिल करते ना, है भाई, खुद इल्म तो हासिल करना चाहिए था कि भाई दीन क्या है, मैं जरा सीखूं। ठीक, भाई क्यों नहीं सीखा आपने दीन क्या है ना, इतना तो पाकिस्तान में रहने वालों को पता होता है कि जी दीन क्या चीज होती है, यानी दीन नाम की कोई चीज होती है। ठीक है ना, तो अब क्या है ये, है ना, इतना तो पाकिस्तान वाला नहीं कह सकता। हाँ भाई ठीक है, कोई कह सकता है कि जी वो साउथ अमेरिका किसी छोटे से कस्बे के अंदर रहने वाली जो जो बच्ची थी उसको नहीं पता कि दीन क्या है, पाकिस्तान में रहने वाला तो ये नहीं कह सकता ना, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं सवाई दीन के। ठीक है ना, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो अब सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं सीख रही, नहीं सीख रही कि क्या फर्ज होता है, क्या कैसे नमाज पढ़ते हैं, कैसे जो है वो गुस्ल करते हैं, कैसे जो है वो पर्दा करते हैं, नहीं सीख रही। तो अल्लाह ताला जो है ना, फिर अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है भाई, अल्लाह ताला के तो कब्जे में सब कुछ है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो फिर इल्म पहुंचा भी देते हैं। जो नई इल्म हासिल कर रहा होता है ना, फराइज का इल्म अल्लाह ताला पहुंचा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना। स्कूल की कोई लड़की जो है ना वो बोलना शुरू कर देती है कि देखो ये है हमारे दीन के अंदर, स्कूल की लड़की नहीं कोई बोलेगी तो जो है वो कोई 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 को खानदान की कोई औरत बोल बोल देगी, है ना, कि ये ऐसा फर्ज होता है किसी ना किसी जरिए से, कोई ना कोई बहाना बना करके अल्लाह ताला हुज्जत पूरी कर देते हैं अपने बंदों के ऊपर, है ना, और वो चीज सेव हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, वीडियो उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है कि देखो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हुज्जत पूरी हो चुकी थी, इल्म तुम तक पहुंचा दिया गया था। अब कयामत के दिन ये जो शख्स है ना, ये जो बच्ची है जिसको किसी ने सिखाया नहीं अपने खानदान में, है ना, कयामत के दिन वो जो 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 अल्लाह ताला ने हुज्जत पूरी करी है ना, कयामत के दिन ये उसके खिलाफ हुज्जत बन जाएगी, वो ये नहीं कह सकेगी कि मुझे तो पता ही नहीं था। ये नहीं चलता। ठीक है, ये तो छोटे से स्कूल के अंदर, स्कूल में बच्चा जो है ना वो गलती का काम करे और आगे टीचर्स जो है ना जब सजा देने के लिए सारे बच्चों को खड़ा करें ना, तो वो बच्ची मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। टीचर ये कैसे तुम्हें पता नहीं था, ये सारी चीजें तो मैं बता चुकी हूँ तुमको, ये चीजें तो जो है वो किताब के अंदर लिखी हुई है, ये चीजें तो जो है ना वहां पे मौजूद है, तुम कैसे कह सकती हो पता नहीं था। नहीं जी, तुम्हें भी पिटाई होगी, तुम्हारी भी पिटाई होगी, ये तो पता ही नहीं था, ये तो दुनिया में नहीं चलता, आखिरत में कैसे चलेगी ना ये वाली बात, इनके तो पता ही नहीं था। बहरहाल ये कुछ रियलिटीज हैं जिनसे कि हम भाग नहीं सकते। इन हालात में जिन पर मुश्किल आई आई है वो उम्मीद भी रखें और तौबा भी करें, और जिन पर नहीं आई वो खौफ भी रखें और अल्लाह की तरफ रुजू भी करें। जी बिल्कुल ऐसे हो, जिन पर ये वाली मुसीबत नहीं आई ठीक है ना, तो वो बहुत खौफ रखें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि अगर उनके दिल में खौफ पैदा नहीं हो रहा ना, ये जो सैलाब की खबरें पढ़ करके या वीडियोस देख करके अगर हमारा दिल नरम नहीं पड़ रहा, तो ये इस बात की निशानदेही है, ये इस बात की अलामत है कि हम हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा अजाब है, ये हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा अजाब है। हमारा घर सलामत है राइट, लेकिन अजाब हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा है। क्यों? इसलिए कि ये कहलाती है गुनाहों में अल्लाह ताला ढील दे रहे होते हैं, हमें अल्लाह ताला ने ढील दे दी है, ये ज्यादा बड़े गुनाह की अलामत है, ज्यादा बड़े अजाब की अलामत है, कि अगर हम ये सब कुछ देख करके और सुन करके भी जो है ना वो गुनाह छोड़ने की तरफ मायल नहीं हो रहे, हमारे दिल नरम नहीं पड़ रहे, हमें अल्लाह ताला के कुदरत का एहसास नहीं हो रहा, ये ज्यादा फिक्र और परेशानी की बात। वो लोग तो जिनके ऊपर आ चुकी, अब वो उसके ऊपर थोड़ा भी सबर कर लेंगे ना, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर अता फरमा देंगे दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी। ठीक है ना, जिनके घर टूटे हैं, जिनके सारा सामान जाया हो गया, ज्यादा बड़ा मसला तो शहरों वालों का है कि जिनके ऊपर ये अजाब अभी ये वाले हालात नहीं आए। ठीक है, इनके इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी बात करेंगे, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो आपको तो आवाना अलहमदुल्ला।